हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सारे वैष्णव से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। आप लोगों की कृपा से जो कुछ पढ़ा हो सुना हो, ये सेवा की दृष्टि से मैं आप लोगों से शेयर करूँ। वास्तव में देखा जाए तो आज एक वरिष्ठ भक्त का क्लास था, पर प्रभु जी का सेवा के कारण वो क्लास मुझे देना पड़ रहा है। तो दृश्य को हम लोग हमारे आंखों के सामने ला सकते हैं। जब राजा सत्यव्रत, जो कि कृतमाला रिवर, कृतमाला नदी, जो कि आज की तारीख में तमिलनाडु का, दक्षिण भारत का तमिलनाडु प्रदेश में जो मदुरई सिटी है उधर बह रहा है, उधर मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर। तो सत्यव्रत राजा उस कृतमाला नदी के तट पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, और उस समय जब भगवान सूर्य को पानी अर्पण कर रहे थे, जल अर्पण कर रहे थे, उस समय एक मछली उनके हाथ में आते है। फिर बाद में वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, भगवान स्वयं होते हैं। फिर बाद में भगवान प्रकट होकर उनके सामने मछली विशाल 80 लाख योजन था मछली का साइज, वो प्रकट होकर भगवान को, ये सत्यव्रत को बोलते हैं कि आज से आने वाले 7वां दिन में इस ब्रह्मांड प्रलय होगा, और उस समय एक विशाल नौका आएगा, उस नौका में आप जड़ी बूटियों को, वनस्पतियों को, सारे आपके प्रजाओं को, सप्तर्षि जैसे कि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, भरद्वाज, जो सारे सप्तर्षि है जिनका उद्देश्य है कि धर्म की और मर्यादा की रक्षण करना, उनको लेके आप क्या करना है, इस बोट में बोर्डिंग होना है, बैठना है, और साथ साथ मेरे भगवान बोल रहे कि मैं जो मछली रूप लेगा, मेरा सिंह रहेगा, उस सिंह को और उस बोट को वासुकी नाग से, और नौका को वासुकी नाग में बांधना है। और भगवान और महाराज सत्यव्रत ब्रह्मा जी का एक रात तक, वो जो पूरे ब्रह्मांड प्रलय के समय जो भूवर्वलोक स्वर्गलोक जो जलमग्न थे उन पे पूरे रात भर विचरण कर रहे हैं। और उसी समय राजा सत्यव्रत भगवान जो मत्स्य अवतार को अलग अलग प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, तो प्रार्थना का श्रृंखला में से जो आज का प्रार्थना है, श्लोक नंबर 49, 46 से हम लोग सत्यव्रत महाराज प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ किए। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 से 8 प्रार्थना है, 53 तक कंटिन्यू रहेगा। तो जो आज का श्लोक है उस पे सत्यव्रत महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, न यत प्रसादा ऐत भागलेश मन्ने च देवा गुरवे जनाः स्वयं। तो हम लोग चर्चा करेंगे देवा गुरव जनाहा, एक बड़ा सिद्धांत छुपा हुआ है इसके अंदर, जो कुछ मैं वरिष्ठों से सुना हूं, कुछ मैं समझा हूं, आपसे शेयर करने के लिए प्रयास करेगा। तो हम देखते हैं सत्यव्रत महाराज जो प्रार्थना करें उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत छुपा हुआ है हम जैसे साधक के लिए। तो सत्यव्रत महाराज प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, आप ही कृपा की 10,000 भाग का एक भाग भी कृपा ये लोग कोई नहीं दे सकते। कौन कौन? जनाहा, गुरु या देवी देवताएं। तो एक साधारण जीवन जीते समय हम देखते हैं हमारे जीवन में किसी का ना किसी का जरूरत होता है, हम लोग सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों प्रकार की नीड्स होता है, जैसे कि हम लोग को खाना है तो अनाज हम अपने आप नहीं उगता है, किसी ने ला के देता है, कपड़ा पहनना है तो हम कपड़ा खुद पहना के नहीं पहनते, खुद बना के नहीं पहनते, कपड़ा के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कहाँ ट्रैवलिंग करना है तो इसके लिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि खुद ट्रेन, बस, एरोप्लेन बना के ट्रैवलिंग करते, नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये हो गया हमारे फिजिकल नीड्स। इमोशनल नीड्स, हम लोग कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े हुए व्यक्ति के पास जाते हैं, उनसे कुछ सलाह लेते हैं, जो कि जीवन में जो डिस्टर्ब, जो विषम परिस्थिति में उनकी जो मार्गदर्शन हमें शांतिमय जीवन जीने के लिए मदद करता है। साथ साथ कुछ गुरु के पास लोग जाते हैं, उनको कुछ मिस्टिक शक्तियां चाहिए होता है इसलिए, या स्पिरिचुअल नीड्स बोल सकते हैं, लोग सब देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जैसे कि भागवत का 2nd कैंटो में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सब कृष्ण भक्त नहीं बनते, तो जो बाकी लोग हैं उनका किस प्रकार की धारणाएं हैं, सुखदेव गोस्वामी सेकेंड कैंटो का थर्ड चैप्टर है, उसे वर्णन करते हैं डिटेल से। तो उसे बताते हैं कि जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी की पूजा करनी चाहिए, भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की। तो जो अलग अलग लोग कैसे अलग अलग सब देवी देवता के पास जाते हैं उनका जो नीड्स रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो प्रबल कामनाओं का इच्छुक है उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान के इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। आगे बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो सौभाग्य की आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधिक शिखा दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की और जो केवल धन की इच्छा करता है उसे वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है उसे शिव जी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता है उसे आदित्य की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गों की कामना करे उसे आदित्य के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की और जो जनता में लोकप्रिय का इच्छुक हो उसे साध्यदेव की पूजा करनी चाहिए। तो बताने का उद्देश्य हम लोग जो देखते हैं लोग जो क्या करते हैं खुद का जो इच्छाएं पूरी करने के लिए सब अलग अलग देवी देवता के ऊपर क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं निर्भर होते हैं। पर ये गलत नहीं है क्योंकि ये पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम में रह रहा है तो उसको पंच सोना पांच पाप वो करता ही है डेली। कौन सा पहला है कि वो घर को झाड़ू मारता है जिसके द्वारा कई जीवों की हत्या होता है। दूसरी है घर में आग लगाता है खाना पकाने के लिए तो उनके द्वारा कई जीवों का मृत्यु होता है। तीसरा पाप बताया गया है कि पहले के जमाने में सब उखल होता था मसाला वाला कूटने के लिए, आजकल सब मिक्सर है उसके द्वारा भी कई जीवों की प्राण जाता है, इसके लिए ये भी एक पाप में गिना जाता है। चौथा है पहले के जमाने में सब बेम्बो का चेयर बेंच कुर्सी हुआ करता था, आजकल सब सोफा सेट आ गया तो जो हम डाल के बैठते हैं उसके द्वारा भी कुछ जीव मारे जाते हैं। फिर आगे बताया गया कि और एक पाप है पंच पाप में से, हम लोग जब वो पैदल भी जाते हैं कहाँ पैदल जाते हैं झाड़ू मारते हैं आग लगाते हैं मिक्सर में कुछ मिक्स करते हैं या सोफा सेट वगैरह में बैठते हैं तो इनके द्वारा जान अनजान से कई जीवों का मृत्यु होता है। ये है पंच शून और इस पांच पाप से मुक्ति होने के लिए हर गृहस्थ को इस पांच प्रकार के यज्ञ डेली करना चाहिए। कौन सा पांच प्रकार के यज्ञ पितामह भीष्म बता रहे, एक है कि दैव यज्ञ, दैव यज्ञ यानी कि देवी देवताओं की प्रसन्न करने के लिए कुछ पूजा पाठ करना। दूसरा है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ यानी कि कुछ जानवरों को अपने घर में पालना जिसके द्वारा आपकी जो पाप वो लोग ले लेंगे, जैसे कि पहले के जमाने में हम देखते हैं इवन राजा महाराज भी उनकी कुछ गायों पालते थे कुछ घोड़ा पालते थे कुछ हाथी पालते थे। इवन आज भी देखेंगे इंडिया में विशेष करके विलेजेस में कुछ गृहस्थ होते हैं उनके घर में गाय होता है कुत्ता होता है, मीन्स वो क्या करते हैं भूत यज्ञ करते हैं। तीसरा है मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ यानी कि गृहस्थ का कर्तव्य है वो घर पे खाना बनाने के बाद घर के बाहर जाके पुकारना है तीन बार, कोई भूखा है तो तीन बार पुकारना है, ऐसा नहीं कि स्लो, आजकल अनफॉर्चुनेट लोग घर पे खाना ही बनाते नहीं तो तीन बार पुकारेंगे कोई भूखा है कोई भूखा है कोई भूखा है, तो जब कोई भूखा आदमी घर पे आएगा पहले उनको खाना देंगे बाद में वो खाएंगे। इवन वैदिक शास्त्र में देखते हैं भागवत में जो रंती देवी के बारे में वो एक आइडियल गृहस्थ लाइफ उनके उदाहरण से दिखाया। फिर चौथा ये पितृयज्ञ, एक व्यक्ति को पाप से मुक्त होना है पंचशूनसी तो पंच यज्ञ करना पड़ेगा। पहला बताया मैंने दैव यज्ञ देवी देवता की पूजा करना है, दूसरा है भूत यज्ञ भूतांशी जो जीवों को ये आश्रय देना है, तीसरा है मनुष्य यज्ञ मनुष्यों को खाना खिलाना है, चौथा है पितृयज्ञ मीन्स पितृपुरुषों को श्राद्ध अर्पण करना है। मेरे प्रोग्राम में एक फैमिली आते हैं और मुझे पूछ रहे थे प्रभु जी हम तो सिटी में रह रहे श्राद्ध करना है क्या नहीं, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। फिर सुदर्शन बहु से मिला तो सुदर्शन बहु बोले कि श्राद्ध करना अनिवार्य है 100% करना ही चाहिए क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गया जाके पितृश्राद्ध किए थे, भगवान रामचंद्र ने जब दशरथ महाराज की अंत हो गया वो क्या कहते पिंडदान किए थे, पितृ श्राद्ध किए थे, इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। तो इसलिए हम अगर घर पे पितृ श्राद्ध करते हैं तो पाप से मुक्त होते हैं। और पांचवा है, ये वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ यानी कि ब्राह्मण को बुलाना है, घर पे पठन पाठन करना है, शास्त्रों की अध्ययन करना है, उनसे कुछ जो डाउट से क्लैरिफाई करना है। तो मैं बता रहा था ये जो प्रियव्रत महाराज सत्यव्रत महाराज इधर प्रार्थना कर रहे हैं, समाज में हर कोई व्यक्ति किसी का ना किसी का शेल्टर जाता ही है, भले ही कोई बड़े व्यक्ति महत्व का हो या कोई गुरु का हो या कोई देवी देवताओं का, और ये जरूरत है। इसलिए हम देखते हैं ये सब यूजलेस नहीं, ये सब यूजलेस नहीं है पर अल्टीमेट नहीं है, ये सब जरूरत है पर ये अल्टीमेट नहीं है। हम समाज में जी रहे तो ये सब करना ही चाहिए पर ये हमारे सर्वोच्च गोल नहीं होना चाहिए। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं अगर हमें यात्रा जाना है तो यात्रा जाने के लिए ऑफकोर्स हमें कपड़ा बैग में पैक करना पड़ेगा, ट्रैवलिंग के लिए पैसा भी रखना पड़ेगा, कुछ फूड भी रखना पड़ेगा, पर ये सब बैग पैक करते करते अगर यात्रा ही जाना भूल गए तो ये कुछ काम का नहीं है। वैसे ही समाज में जीते समय हमें ये सारे नीड्स को फुलफिल करना है पर ये हमारे अल्टीमेट नहीं है, तो अल्टीमेट को ध्यान में रख के जीवन जीना चाहिए। इसलिए ये जो देवी देवता का उपासना शास्त्र में कहां विरोध नहीं किया गया है पर साथ साथ ये अल्टीमेट नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जो अभी सेकंड कंडो का कुछ श्रृंखला पढ़े हमने, देवी देवता हमें इस वर दे सकते हैं पर उनकी जीवन में जो क्राइसिस आते हैं वो भी एक साधारण जीवन जैसा भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान के एपिसोड अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है मैं पांच को, तो देखते हैं जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए तो सारे देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण शशांक गंधर्व किन्नर पातालोक निवासी पितृलोक निवासी नागलोक निवासी सब प्रकट होकर प्रार्थना कर रहे, बोले भगवान अच्छा हुआ आपने प्रकट हुए। पितृलोक निवासी बोलते हैं कि ये हमारे सारे पिंड जो मिलता था यही खुद उसका अनुभव करता था, हम लोग भूखा पड़े थे अभी तक। रुद्र बोल रहे कि भगवान अच्छा हुआ प्रकट हुए, प्रलय का काम आपके द्वारा है, आप मुझे दिए हो, पर ये हिरण्यकश्यप अभी प्रलय कर लिया था। तो ये है जो कि देखिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं देवी देवता की, उनके जीवन में भी क्राइसिस आता है, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए और साथ साथ उनको इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी बोलते भक्त सिंधु में हम कृष्ण भक्त बन गए इसका अर्थ नहीं कि देवी देवता को इंसल्ट करें, नहीं, इवन एक छोटा सा मुंगी को भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि भगवान की वो भी अंश है, सर्वश्री चाह हृदय सन्निविष्ट। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये सब यूजलेस नहीं है जो पूजा वरा करना और साथ साथ अल्टीमेट नहीं है। तो अल्टीमेट क्या है फिर, शास्त्र बता रहा है कि ये जो सारे जो नीड्स है वो केवल शारीरिक स्तर पे, पर हम लोग स्पिरिट सोल है, इसलिए जो आत्मा का फूड है वो है प्रेम। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तभी जॉर्ज हैरिसन उनको मिलते हैं, और जॉर्ज हैरिसन जब मिलते हैं तो मैं प्रभुपाद का सेंटेंस पढ़ के आपको दिखाता हूँ। जॉर्ज हैरिसन उनका क्या कहना है, ये सब बड़ी नीड्स है, हमें खाना है, वेल सेटलमेंट होना है, पर साथ साथ ये अल्टीमेट नहीं है। तो अल्टीमेट क्या है, जॉर्ज हैरिसन बोल रहे कि एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम डोंट रियलाइज दैट दे आर, बट दे आर। कृष्णा इज गॉड, द सोर्स ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, द कॉज ऑफ ऑल, दैट इज वाज और एवर विल बी। वो बोलते कि हर कोई व्यक्ति अभी आमतौर से देखिए एक पति पत्नी बाहर जाते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं, इसका अर्थ क्या है, जो आत्मा का स्वभाव है कि प्रेम करना, जो आत्मा का स्वरूप है कि दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रस में सेवा में लगे रहना, तो उसका जो मूल स्वरूप है कि किसी का ना किसी को प्रेम करना, पर हम लोग क्या किए हैं वो हमारा जो वास्तविक सत्ता है उसको भूल के दूसरे के यहां प्रेम में लगे हुए, इसलिए अलग अलग योनि मंडरा रहे हम लोग। तो इसलिए जॉर्ज हैरिसन जब प्रभुपाद को मिलते हैं, प्रभुपाद थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, प्रभुपाद बोलते हैं जॉर्ज हैरिसन को भगवान ने भेजे है, वो एक स्वयं गंधर्व है, वो आए मेरे गुरु के आंदोलन को आगे लेने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। तो फिर जॉर्ज हैरिसन आगे बोलते हैं कि हर कोई व्यक्ति वो जो आत्मा का नीड से प्रेम उसको ढूंढ रहे पर वो इनडायरेक्टली कृष्ण को ढूंढ रहे। तो प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन आगे बोलते हैं कि देर आर मैनी योगी मैनी प्रोसेस, लाइक वो बोलते हैं कि ज्ञान योग, हठ योग, क्रिया कर्म भक्ति विच आर ऑल एक्लेम्ड बाय द मास्टर ऑफ द ईच मेथड. स्वामी भक्ति वेदांत इज एज हिज टाइटल सेस ए भक्ति योगी फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिवोशन बाय सर्विंग गॉड थ्रू ईच थॉट वर्ड एंड डीड एंड बाय चैंटिंग हिज होली नेम द डिवोटी क्विकली डेवलप गॉड कॉन्शियसनेस. तो इसमें बोल रहे कि जॉर्ज हर्सन बोल रहे कि जो भक्ति वेदांत स्वामी दे रहे वो अल्टीमेट चीजें दे रहे और उसका ही हम लोग तलाश में है. इनडायरेक्टली ढूंढ रहे और प्रभुपाद स्वामी ने डायरेक्टली दे रहे. फिर बाद में ऑल यू नीड इज लव कृष्ण. जॉर्ज हर्सन 31 मार्च 1970. तो हम देखते हैं जो शारीरिक जरूरत है वो सब देवी देवताएं पूरी कर सकते हैं, पर जो आत्मा का जरूरत है वो केवल भगवान कृष्ण ही पूरी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वास्तविक सत्ता वही है और उसको हमें पूरी करने के लिए केवल भगवान कृष्ण या उनकी प्रतिनिधि के आश्रम में जाना चाहिए. इवन अगर हमारे बहुत सारे इच्छाएं भी है तो भी हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भगवान वो भी पूरी करते हैं. जैसे हम लोग सुनते हैं ध्रुव महर्षि बहुत बड़ा आकांक्षा था, वो जब भगवान की ओर जा रहे थे तभी उनके जीवन में नारद मुनि आ गए और एक मार्गदर्शक गुरु जो एक एक्सपर्ट गुरु है वो एनलाइट करते हैं शिष्य को अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए. और फिर भी वो क्या करते हैं, उसी इच्छा से भक्ति करते हैं. फिर आगे जाके जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के दिव्य जो रूप दर्शन के पश्चात वो बोलते हैं कि भगवान मैं एक कांच की टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था, मुझे आप स्वयं हीरा मिल गए. तो ये देखिए अगर कोई व्यक्ति में कुछ इच्छा भी है तो भी अगर भगवान की भक्ति करता है तो अगर उनके जीवन में मीन्स एक मार्गदर्शक गुरु मिल जाते हैं तो उनका जीवन सदमार्ग में आगे बढ़ता है. या दूसरे उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, जब परम पूज्य गिरिराज महाराज उनके घर पे लिखे थे आई एम ए गॉड, मैं भगवान हूँ बोल के उनके घर पे लिखे थे. पर जब शिला प्रभुपाद को मिलते हैं, प्रभुपाद का फर्स्ट मीटिंग में प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि ए जनरल ह्यूमन बींग कैन नॉट बिकम ए गॉड. वो बोलते कि साधारण मनुष्य कोई भगवान नहीं हो सकते, भगवान होने के लिए उनमें कुछ विशेष गुण है और भगवान भगवान ही है और हम लोग एटर्नल सर्वेंट है. नित्य नित्यानम चेतनस्य चेतनानम एक बहुधा जो विदधाति कामान. तो हम सुनते हैं जो आत्मा का नीड्स है वो केवल मीन्स शारीरिक नीड्स से देवी देवता पूरी कर सकते हैं और जो आत्मा का नीड्स है गुरु या गुरु की प्रतिनिधि वो केवल पूरी कर सकते हैं. इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स आत्मा के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए. एक्चुअली भगवान आत्मा राम है, उनको ये सब कुछ जरूरत नहीं भक्तों का बगरा बगरा. फिर भी भक्ति इतना उच्च है भगवान भी भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं, भक्त के लिए भूखा हो जाते हैं. इसलिए क्या करते हैं, भक्ति का महत्व दिखाने के लिए भगवान क्या करते हैं, यशोदा माई के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे दूध चाहिए. मीन्स क्या करते हैं, जो आत्मा राम है तृप्त काम है जो कि स्वराट है वो भी बोल रहे कि मुझे किसी का जरूरत है, ये भक्ति का शक्ति. या वही भगवान नरसिंहदेव एक सुंदर चक्रवर्ती पाद कमेंट दे रहे हैं. हम लोग देखते हैं नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यप का छाती फाड़ते हैं तो इस समय देखेंगे आप लोग भगवान नरसिंहदेव सर नीचे करके सब छाती फाड़ रहे. क्यों फाड़ रहे, चक्रवर्ती पाद उनकी कमेंट्री बता रहे. नरसिंहदेव सोच रहे ये तो हृदय तो मेरे जगह हृदय में बैठ हृदय मेरा जगह है क्योंकि मेरा बैठने का स्थान है सर्वश्रेष्ठम हृदय सन्निविष्टो. पर ये हिरण्यकश्यप ने काम क्रोध को कहां से बैठा दिया है, तो नरसिंह भगवान ढूंढ रहे कौन सा कोने में काम क्रोध बैठा हुआ है, उसको निकाल के मैं फेंकने वाला हूं. तो देखिए आचार्य का ये भाव है. तो इसलिए हम लोग ये सोचना चाहिए जो आत्माराम भगवान है उनकी सेवा में लगे, इवन कुछ इच्छाएं भी है भी तभी. तो वो आत्माराम भगवान वो भक्त उनको भक्ति का रस आस्वादन करना है, इसलिए क्या करते हैं भक्तों की सेवा करते हैं और भक्ति रस खुद आस्वादन करते हैं. एक आचार्य बता रहे थे नरसिंहदेव जो प्रकट हुए वो जो प्रहलाद जो प्रार्थना अर्पण कर रहे थे प्रहलाद महाराज को, पूरे जितना लीला में देखेंगे इस लीला विषय से भगवान क्या करते हैं प्रहलाद को गोद में बैठाते और चाटते हैं उनके ये मीन्स जीवा से. ऐसा दूसरी कोई लीला में आपको कोई भी अवतार में नहीं देखने को मिलेगा. फिर बाद में वही भगवान नरसिंहदेव को इच्छा होता कि मुझे ही भक्त बन के वात्सल्य रस का आस्वादन करना है, इसलिए क्या करते हैं भगवान राम के रूप में आते हैं. फिर जब राम के रूप में आते हैं नरसिंह भगवान वही उनको वात्सल्य रस का आस्वादन करना है, इसलिए वो राम के रूप में आते हैं. कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दशरथ महाराज इनके साथ वो क्या करते हैं वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए प्रयास करते हैं, पर फिर भी उनको इतना आनंद नहीं आता है. प्रभुपाद बोलते हैं कि वो रस में एलॉय आ गया, एक स्तर आ गया, लॉ एंड रेवरेंस। तो इसलिए वही भगवान को फिर से उनकी इच्छा तृप्ति करने के लिए कृष्ण रूप में आते हैं, और कृष्ण रूप में आके सारे भक्तों के साथ वृंदावन में लीलाएं करते हैं, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य सांद्रस्य। फिर बाद में हाँ, एक आचार्य कमेंट्री बता रहे थे, महानदी मार्ज के लेक्चर में सुन रहा था, तो महाराज जी बता रहे थे कि जैसे कि राम भगवान और कृष्ण भगवान लीला में हम लोग कंपेयर करेंगे, विष्णु राम और कृष्ण, तो बोले कृष्ण लीला में कृष्ण की सखा लोग क्या कर सकते, उनकी गोद में बैठ सकते, उनकी कंधे में बैठ सकते, एक बेड में सो सकते, पर विष्णु लीला में ये सब नहीं हो पाएगा क्योंकि जय विजय उनकी द्वारपाल है। कृष्ण की जो गोकुल का या गोलोक वृंदावन का द्वारपाल कौन है, रक्षक और उपक्षक, वो क्या करते हैं, कृष्ण को ड्रेसिंग करते हैं, कृष्ण को नहा लेते हैं, कृष्ण को सुंदर कपड़ा पहनाते हैं, और कृष्ण को कभी कभी चुम्मा देते थे, किस करते, क्योंकि कृष्ण बछड़ा चढ़ने के लिए जाएगा बहुत दूर, पर जय विजय कभी विष्णु को ऐसा नहीं कर पाएंगे, दूर है। और राम लीला में सुग्रीव या ये विभीषण या हनुमान ये सब इतना क्लोज नहीं आ पाएंगे, तो ये है कृष्ण भक्ति का। पर देखिए कृष्ण भक्ति इतना उच्च स्तर है, और वही भगवान इतना मन से वो रसराज है, और वो रसराज को उनके भक्त क्या करते हैं, रसराज को ही दे देते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति बांटते हैं वृंदावन में, पर वो भक्त क्या करते हैं, कृष्ण को ही दे देते हैं। जैसे गौ लीला में हम देखते हैं, गौ लीला में हरिदास ठाकुर वो क्या किए, जब बेनापोल में हरिदास ठाकुर को पतन करने के लिए लक्ष्य हीरा आई थी, हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उसको नकारा नहीं, भले ही वो नेगेटिव एटीट्यूड लेके आया था, हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उसको कृष्ण ही दे दिए। या हम गौ लीला में देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप लीला में निमाई पंडित की निमाई की लीला कर रहे थे बचपन में, तभी वो छोटा सा पिल्लू कुत्ता था, जो उसको भगवान क्या किए, जो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे लोचनदास ठाकुर एक प्रार्थना बोलते हैं, वो बोलते कि देनो हिनो पति तो पामरो नहीं बाछे, ब्रह्मारे दुर्लभ प्रेम सभा कार्याचे। तो वो भगवान गौ नेता क्या करते हैं, एक कुत्ते को भी वो कृष्ण प्रेम दे देते हैं। या हम लोग तीसरा लीला ले सकते जय ये जगाई मधाई। तो जगाई मधाई इतना पापी थे हम लोग सुनते हैं शास्त्रों से, इवन चित्रगुप्त और यमराज जितने सारे देवी देवता तो सब त्रस्त थे, चित्रगुप्त भी त्रस्त हो गए थे, इनको हमें इनका पाप काउंट नहीं कर सकते। पर उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जब उनके सारे पाप को ले लेते हैं, तो सारे देवी देवता भी सेंसलेस होकर गिर जाते हैं। तो एक आचार्य बोलते हैं, वास्तव में देखा जाए ना, हम लोग जगाई मधाई से भी पतित थे। क्यों? क्योंकि जगाई मधाई रहते थे नवद्वीप में, पीते थे गंगा जल, स्नान करते थे गंगा जल में, हम लोग कहाँ गंगा जल में स्नान करते, कहाँ गंगा जल पीते है क्या नहीं। इसलिए हम लोग एक्सेप्ट करना ही चाहिए, हम लोग जगाई मधाई से भी पतित थे। पर वही भगवान क्या करते हैं, इतना जो सर्वोच्च प्रेम है वो ऐसे आके फ्री में मुक्त में सबको बांटते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि अनार पिता चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रेय हरिप्राट सुंदर दृति कदम संदीप्तम सदा हृदय कंदर स्फुरित सचिन नंदन। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण को ही हमें दे देते हैं, कृष्ण तो कृष्ण भक्ति बांटते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ही हमें दे देते हैं। या कविराज गोस्वामी आगे बोलते हैं कि आनंद लीलामय विग्रहाय हेमांब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वो जो चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो कि महाप्रेम प्रदान कर रहे फ्री में। तो इसलिए ये प्रभुपाद का देन है, हम लोग को जो चीजें मिला है उसका बोलते ना हर जो अंग है लिम्स है उसको सिंसियरली अटेंटिवली हमारे जीवन में पालन करना है। परम पूज्य गौरगोविंद महाराज एक सुंदर कथा बताते हैं, वो बोलते हैं ओडिशा में दो वैष्णव रह रहे थे एक मठ में, एक नाम था रामदास, दूसरे का नाम था श्यामदास। बहुत साल तक सेवा की भगवान की, राधा श्याम सुंदर की। जब बूढ़े हो गए तभी उनकी गुरु के पास जाते, बोलते गुरुदेव हम इतना दिनों से सेल्फलेस सर्विस कर रहे, फिर भी भगवान का कोई रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान हमारे साथ नहीं हो रहा है, अच्छा लगे हम लोग आश्रम छोड़ के जा रहे। तो गुरुदेव बोलते कि ठीक है आप लोग ने तय कर लिया, पर मेरा ये आखिरी इच्छा है, आप क्या करो इस आश्रम से वृंदावन जाओ, वृंदावन में सारे वैष्णवों का दर्शन लो, उनका थोड़ा बहुत सेवा करो, फिर वृंदावन से वापस आ जाओ मेरे पास, फिर आप लोगों को मैं इधर से मुक्त कर लेगा। तो जो रामदास और श्यामदास पैदल जाते हैं ओडिशा से वृंदावन, और जब वृंदावन जाते हैं तो उनकी गुरुदेव पहले बोले थे आप जाने के बाद उधर ढूंढने का, एक महान वैष्णव के हमें दर्शन लेना है, उनकी सेवा करना है। तो ये दोनों जाते हैं पैदल, करीब 1700-1800 किलोमीटर पैदल जाते हैं इतना दूर। फिर जब वृंदावन पहुँचते अलग अलग मंदिर आश्रम अलग अलग मठ को जाते हैं, दर्शन लेते हैं और सारे वैष्णव को बताते हम लोग ऐसे ओडिशा से आए हैं, कुछ आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तो इस समय सारे वैष्णव बोलते हैं कि एक्चुअली मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, भगवान की एक कृपा है, गुरु की कृपा है, मुझे विग्रह दिए गुरुदेव ने, उनकी सेवा में लगा रहे। तो अगर आपको वैष्णव को मिलना है ना, आप राधा कुंड पे जाइए। तो जो रामदास श्यामदास अलग अलग जो आचार्य का गोस्वामी का जो मंदिर है, गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर दामोदर, ये मंदिर विजिट करते करते जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा करके राधा कुंड जाते हैं। फिर राधा कुंड में अलग अलग वैष्णव को दंडवत करते हैं, वैष्णव लोग उनको कुछ प्रसाद खिलाते हैं, करीब पास में बुलाते हैं, क्योंकि जो रूप गोस्वामी लिखते हैं ये जो 64 लेम्स है डिवोशनल सर्विस का, तो उनमें से एक अंग है भक्तों के साथ साथ में बैठ के प्रसाद लेना, बातचीत करना, ये भी एक अंग है। तो ये जो वैष्णव जो दो ओडिशा से आए थे राधा कुंड जाते हैं, उधर का वैष्णव को मिलते हैं और ये अपना इच्छा प्रकट करते हैं, गुरुदेव ने मुझे भेजे हैं, हमें एक वैष्णव का दर्शन करना है, सेवा करना है। तो राधा कुंड के पास जो सारे भक्त थे वो बोले कि एक्चुअली आप जो जिस वैष्णव की तलाश में हो ना, वो हम लोग नहीं है, वास्तव में एक महान वैष्णव अभी खेतुरी ग्राम में रह रहा है, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, आप उधर जाइए और उनका संग कीजिए, जो आपकी गुरुदेव की इच्छा है वैष्णव की संग करना, सेवा करना, आपकी इच्छा पूरी होगा। तो वृंदावन से खेतुरी ग्राम जो कि आज की तारीख में बांग्लादेश में है, वो क्या कहते हैं पैदल जाते हैं। फिर जब खेतुरी ग्राम जाते हैं, जाने के बाद पूछते पूछते नरोत्तमदास ठाकुर का भजन कुटीर कहाँ है, फिर नरोत्तमदास ठाकुर का भजन कुटीर पास जाते हैं और उनकी दो शिष्य थे नरोत्तमदास ठाकुर का, उनको बताते हम लोग ऐसे ऐसे ओडिशा से वृंदावन गए थे, वृंदावन से अभी खेतुरी आए हैं, हमें वैष्णव की संग करना है, सेवा करना है। तो ये जो दो शिष्य थे नरोत्तमदास ठाकुर का, वो जाते हैं और उस समय नरोत्तमदास ठाकुर जप कर रहे थे, और ये दो शिष्य उनकी बोलते हैं गुरुदेव आपको मिलने के लिए दो वैष्णव आए हैं। तो इस समय नरोत्तमदास ठाकुर बोलते हैं कि पहले उनको खाना खिलाओ, वो भूखा रहेंगे, पहले उनको प्रसाद खिलाओ। तो वो जो नरोत्तमदास ठाकुर का शिष्य लोग ये जो दो ओडिशा का वैष्णव रामदास श्यामदास को पेट भर के भोजन कराते हैं। फिर बाद में वो शिष्य लोग बोलते हैं गुरुदेव आपने बोले इसलिए हमने उनको खाना परोस दिया, पर अभी तक भोग नहीं लगाया था, खाना जस्ट अभी बना था, भोग लगाना बाकी था, पर आपने बोला बोल के ये कर लिया। तो नरोत्तम ठाकुर ने बोले कि बहुत अच्छा किया, पहले भक्तों को खिलाना चाहिए, बाद में भोग दिखाने के बारे में सोचेंगे, अभी आप दोबारा खाना बनाओ और भगवान को भोग दिखाओ। और नरोत्तम ठाकुर क्या किए, फिर अपना जप करने बैठ गए और ये दो वैष्णव प्रसाद लिए। फिर नरोत्तम ठाकुर को मिलने के लिए जा रहे थे, उस समय भगवान स्वयं प्रकट होते गोविंद देव, और नरोत्तम को बोलते कि नरोत्तम आपने ही भजन लिखे हो, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरो वैष्णव पराण, तो आपने भजन लिखे है वैष्णव के हृदय में गोविंद हूं मैं, इसलिए मैं मेरे लिए खाना दोबारा मत पकाओ, जो खाना पकाया था वैष्णव खा लिया, नहीं कि मैं खा लिया, दोबारा खाना पका के भोग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो महाराज जी बता रहे थे हम लोग ढूंढ रहे भगवान कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, भगवान हमारे सामने ही है भक्त के रूप में, अगर भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान हमारे सामने ही है और भगवान हमारे साथ ऐसी प्रोग्रेशन करते हैं भक्तों के द्वारा, सारे सिद्धांत का यही सार है। या पांचवा स्कंद हम लोग देखते हैं जब जड़भरत महाराज और रहुगण की डिस्कशन में जड़भरत बोलते हैं कि रहुगण तपस्या न याति न चेज या सर्व निर्वापणाद गृहत्ता न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेकम। तो बोलते हैं अगर महत की आप सेवा कर रहे हो तो आपको दूसरी कुछ यज्ञ तपस्या दान यज्ञ यज्ञादि करने का जरूरत नहीं है। तो भगवान की भक्त अगर हमारे साथ में है, उनके साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनसे कुछ हरी कथा सुनने को मिल रहा है, तो यही वैकुंठ है, यही भगवत धाम है। चित्रगत महाराज प्रार्थना करे 6th कैंटो में कौन से श्लोक है, नारायण परा सर्वे न कुटस्थ न विव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्याति दर्शनम। जो नारायण परा है उनको भले स्वर्ग में रखो या नरक में रखो, वो केवल भगवान को ही देखेंगे। स्थावर जंगम दिखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मृति। तो इसलिए हम लोग को दूसरी तीसरी कोई वैष्णव को ढूंढने का जरूरत नहीं है, दूसरी कुछ प्रोसेस को ढूंढने का जरूरत नहीं है। जो भक्त हमारे सामने प्रकट है वही भगवान की प्रतिनिधि है, उनकी सेवा कर रहे तो डायरेक्टली हमें भगवान की सेवा का मौका मिल रहा है, भगवान की शंका मिल रहा है, मौका मिल रहा है। और सारे सिद्धांत का यही सार है, हम लोग अभी हमारे साध्य यही है, साधन वही है, हमें अभी साधना जो कर रहे हैं वो साध्य करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, साधना शरीर से वो साध्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब सिद्ध हो जाएंगे वही हमें वही करना है, सिद्ध शरीर से। अभी साधना शरीर से वो साध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर सिद्ध शरीर से वही साध्य करेंगे। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना पॉसिबल हो, मैं नाम जप करके, भक्तों की सेवा करके, हियरिंग चैंटिंग करके अपने आप को प्योरीफाई करूँ, शुद्ध करूँ। जो सत्यव्रत महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान अगर देवी देवताओं को या कोई राजा को या कोई गुरु को शरण में अगर जाने में इतना लाभ नहीं है जितना आपकी शरण में जाने में, ये आज की क्लास का एसेंस है। चलो प्रभुपाद की, किसी का कुछ कमेंट्स है तो कौन सा प्रोजेक्ट, हाँ तो जो रामदास श्यामदास उनको जो नरोत्तम दास ठाकुर के सामने ये प्रकट होते हैं, कौन, भगवान गोविंद देव, और बोलते कि हे नरोत्तम आप दोबारा कुकिंग मत करो, मैं वैष्णव की शरीर से खा लिया प्रसाद। तो बाद में नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, रामदास श्यामदास को मिलते हैं, फिर सुंदर भजन कीर्तन होता है। तो वही एसेंस है, भजन कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद के टैगोर प्रेमानंद। यस बजे हाँ, तो इसपे वही मैं बताया आप जी, इसपे प्रियवत सत्यव्रत महाराज प्रार्थना कर रहे, देवा गुरु जनाहा। विशेष करके आमतौर से लोग जीवन जीते समय इन तीन लोगों के आश्रय में जाते हैं, देवा यानी कि देवी देवता, जैसे कि हम लोग सेकंड कैंडो का लिया, किसको अगर सुंदर स्त्री चाहिए वो उमा की पूजा करते हैं, किसको पैसा चाहिए तो इंद्र की पूजा करते हैं, ये सब देवता के आश्रम में जाते हैं। दूसरा है जनाहा, जिसके आमतौर से देखते हैं आज की तारीख में लोग सब पल्टिशियन के, जो पल्टिशियन है क्या बोलो उसको, जो नेता राजनेता के आश्रम में जाते हैं, पैसा चाहिए, कुछ पोस्ट पोजिशन चाहिए। तो ये भी अल्टीमेट नहीं है, यूजलेस नहीं है, साथ साथ अल्टीमेट भी नहीं है। तो हमें ये दो वार्ड के ऊपर फोकस करना है, एक है अल्टीमेट चीज को ध्यान देना है और साथ साथ जीवन जीते समय हमें इन सब का भी साथ में लेके जाना है। इसी प्रभुपाद बोलते हैं कि ये सब हमारे जो गोल को अचीव करने के लिए सब स्टेप्स हैं। और तीसरा है प्रभु जी गुरु, जैसे आज की तारीख में लोग सब आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, उनका इच्छा क्या रहता है, कुछ मानसिक शांति मिले उनकी सलाह से, या कुछ मिस्टिक शक्ति मिले, वेदांजन बोलते हैं उनके लेक्चर में लोग चमत्कार देख के नमस्कार करते हैं। तो जो चमत्कारी शक्तियां वो जो गुरु लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल साधना से वो कमा लेते हैं, ये भी अल्टीमेट नहीं है। तो हमें अल्टीमेट की ओर ध्यान देकर जीवन जीना है। प्रियवत महाराज का, सत्यव्रत महाराज का यही सीखा है। ओके हरे कृष्ण निताय गौर प्रमानंदे हरे हरि बोल।